दिन के गुणों के दान में बेवर्धमान महान जिंद चरें हमारे ध्यान में। जैन दर्शन की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। इसकी चर्चा कल विस्तार से अपन ने की थी। उस आत्मा की उपलब्धि हमें कैसे हो? हम स्वभाव से तो भगवान हैं, पर पर्याय में भी भगवान कैसे बने? उसके लिए कितना और क्या और कैसा पुरुषार्थ चाहिए? इसकी चर्चा अभी अपन आज करेंगे, क्योंकि सभी आत्मार्थी भाइयों का एक ही प्रश्न है। सबके हृदय को एक ही प्रश्न निरंतर मथता है कि आत्मा की बातें तो बहुत होती हैं, पर उसकी उपलब्धि कैसे हो, उसका अनुभव कैसे हो, उसमें स्वयं का पुरुषार्थ कितना काम करता है और गुरु का निमित्त कितना होता है, गुरु का योगदान कितना है। इस सब बात को अपन एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे तो बात जल्दी ख्याल में आएगी। एक माँ और बेटे एक बहुत बड़ा मेला देखने के लिए गए थे और उस मेले में दोनों बिछुड़ गए। एक पुलिस चौकी पर माने जाकर रिपोर्ट लिखाई कि मेरा बच्चा खो गया है, जो व्यक्ति उसे खोज के लाएगा उसे मैं 500 रुपया इनाम दूंगी। दूसरी पुलिस चौकी पर वो बालक पहुंच गया और उसने भी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से पूछा कि कौन आया है तो उसने जवाब दिया, ये खोया हुआ बालक आया है। बालक बोला कि इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं खोया हूं, मेरी मम्मी खोई है। तो उसने कहा, चुप रह, तू नहीं समझता है, खोते तो बालक ही है, लेकिन मैं तो आपके सामने खड़ा हूं ना, मैं कहां खोया हूं, खोई तो मेरी मम्मी है। आखिर अंत में यही रिपोर्ट लिखी गई कि एक खोया हुआ बालक प्राप्त हुआ है जिसे उसके मां तक पहुंचाना है। फिर पूछताछ शुरू हुई उस बालक से, तेरा क्या नाम है? कि पप्पू। माँ का क्या नाम है? कि मम्मी। बाप का क्या नाम है? कि पापा। कि रहते कहाँ हो? कि अपने घर में। पुलिस वाले कहते हैं कि इस बच्चे को अपना एड्रेस भी पता नहीं है, माँ का नाम भी याद नहीं है, पिता का नाम याद नहीं है, तो इसका पता कैसे लगाएं? बच्चा सोचता है कि जिस माँ को मैं रोजाना जिस नाम से पुकारता हूँ 10 बार और हर बार माँ आकर खड़ी हो जाती है, ये पुलिस वाले उस नाम को नाम ही मानने को तैयार नहीं है, क्या करें? तब उन्होंने आगे पूछना शुरू किया कि बेटा, तुम्हारी मम्मी ने आज साड़ी कैसी पहनी थी? क्योंकि माँ को खोजना है ना, तो साड़ी का रंग पता लग जाए तो सुविधा रहेगी ना थोड़ी बहुत। लेकिन वो लड़का बोला कि मैंने तो माँ की साड़ी देखी ही नहीं, मैं तो रोजाना माँ को ही देखता हूँ, साड़ियाँ तो पड़ोस में देखती हैं कि कैसी पहनी, कितने में आई थी, कहाँ से आई थी, बेलगांव की है, बेंगलोर की है, क्या है? जब ये भी पता नहीं है तो उसकी माँ को कैसे खोजे? तो पुलिस ने पूछा कि तेरी माँ मोटी है या पतली, तेरी माँ लंबी है या ठिंगी, तेरी माँ काली है या गोरी। तो लड़का बोला कि अम्माएं 6 प्रकार की होती हैं, ये तो मैंने आज ही सुना है। मैंने माता का रूप रंग देखा ही नहीं है, मैंने तो माँ में मांपन ही देखा है। उसका गोरापन और कालापन, मोटापन और पतलापन मैंने आज तक देखा भी नहीं, और ये तो अपनी दृष्टि का फेर है। मुझे भी आज तक ये पता नहीं चला कि मैं गोरा हूं या काला, मैं लंबा हूं या ठिंगा, मैं मोटा हूं या पतला। आप बता सकते हैं क्या? क्यों देवेंद्र भाई, किसी काले आदमी के बगल में मुझे खड़ा कर दो अफ्रीकन के, तो आप मुझे गोरा भी कह सकते हैं। किसी अंग्रेज के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे काला भी कह सकते हैं। किसी मुझसे भी लंबे आदमी के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे ठिंगा भी कह सकते हैं, और मुझसे ठिंगे आदमी के बगल में खड़ा कर दो तो लंबा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार किसी मोटे ताजे के सामने खड़ा कर दो तो दुबला पतला भी कह सकते हैं, और किसी सीखिया पहलवान के पास खड़ा कर दो तो मोटा भी कह सकते हैं। यानी मुझे मोटा पतला लंबा चौड़ा काला गोरा कहने के लिए किसी दूसरे आदमी का बगल में होना बहुत जरूरी है। यानी मैं किसी की अपेक्षा गोरा हो सकता हूँ, किसी की अपेक्षा काला हो सकता हूँ, किसी की अपेक्षा मोटा हो सकता हूँ, किसी की अपेक्षा पतला हो सकता हूँ, लेकिन वस्तुतः ना तो मैं मोटा हूँ, ना मैं पतला हूँ, ना मैं काला हूँ, ना मैं गोरा हूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। आत्मा की तुलना किसी दूसरे से की जा सकती है? बोलो, माँ कैसी होती है? मासी जैसी, मामी जैसी, बुआ जैसी? नहीं, माँ तो माँ जैसी ही होती है, उसकी उपमा किसी दूसरे से नहीं दी जा सकती। ऐसे ही आत्मा कैसी होती है भाई साहब? कि आत्मा तो आत्मा जैसी ही होती है, उसकी उपमा किसी दूसरे से नहीं दी जा सकती। अब पुलिस वाले बोले कि इस लड़के को तो कुछ भी पता नहीं है, तो क्या करे? ये लड़का तो अपनी माँ को पहचानता ही नहीं है। बोले, ये बात सच्ची है सर जी? वो लड़का अपनी माँ को नहीं पहचानता है? यदि माँ उसके सामने आ जाएगी तो वो पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? तो कौन कहता है लड़का माँ को नहीं पहचानता है? पहचानना जुदी चीज है और पहचान को भाषा देना जुदी चीज है। वो अपनी पहचान को भाषा नहीं दे सकता, वो पहचान को भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी माँ को पहचानता नहीं है, ये बात सही नहीं है। और एक बीमा एजेंट था जिसने 10 वर्ष पहले उसकी माँ का बीमा किया था, तो उसके डॉक्टरी मुआवना भी कराया था कि नहीं, तो सब बराबर नापा था कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी मोटाई है, 36 इंच सीना है, 32 इंच कमर है। उसकी डायरी में आज भी सब कुछ लिखा है। यदि कोई व्यक्ति उससे पूछे कि फला महिला कितनी लंबी चौड़ी है, क्या नाम है, तो सब बता सकता है वो, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी मोटी, और यहाँ पर एक निशान है। लेकिन वो माँ बहन सामने आ जाए तो पहचान नहीं सकता। बोलो, वो बीमा एजेंट उसकी माँ की पहचान को भाषा दे सकता है, लेकिन पहचान नहीं सकता। और बालक पहचान सकता है लेकिन पहचान को भाषा नहीं दे सकता। ऐसे ही जो आत्मा के अनुभवी हैं वो आत्मा को पहचानते हैं भले ही उसे भाषा में व्यक्त नहीं कर पाए, ख्याल में ना। और ऐसे भी लोग हैं कि लच्छेदार भाषा में घंटों आत्मा पर व्याख्यान करें लेकिन आत्मा सामने आ पाए तो पहचान भी नहीं पाए। देखो नींबू का स्वाद कैसा है, मान लीजिए आप सब लोगों ने आज तक नींबू चखा नहीं है क्यों, और बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस करो और उनसे व्याख्यान दिलाओ और वो व्याख्यान देकर आपको समझा दे कि नींबू के का स्वाद कैसा है, समझा सकते हैं? कितने घंटे लगेंगे समझाने में और आप लोग कितनी देर में समझ जाएंगे? वो जो विद्वान है ना उनने तो नींबू चखा है
क्या प्रदीप जी,
फिर भी वे कितना ही बढ़िया भाषण देंगे, नींबू खट्टा होता है तो खट्टा तो इमली भी होती है, आम भी होता है, बहुत से पदार्थ खट्टे होते हैं, तो नींबू का स्वाद आपके ख्याल में आ सकता है? नहीं। घंटों के व्याख्यान जो काम नहीं कर सकते, एक नींबू लाओ और उसे दोनों हथेलियों से दबाकर एक बूंद आपकी जबान पर डाल दो तो पता चल जाएगा कि नहीं नींबू का स्वाद कैसा है। शिकंजी बना के पीने से नहीं चलेगा पता, क्योंकि इसमें तो बहुत चीनी मीनी न मालूम क्या मिल जाएगा। और कुछ भी मत मिलाओ, एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़ के पियो तो नींबू के स्वाद का पता लग जाएगा कि नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाएगा। असली स्वाद तो नींबू को चाकू से भी मत काटो क्योंकि उसमें चाकू का स्वाद लग सकता है
क्या,
हाथ से निचोड़ो और उसकी एक बूंद हमारी जबान पर आए तो पड़ सकता है। ऐसे ही आत्मा को भाषा में कितना ही समझाओ, जिन्होंने आत्मा का अनुभव भी किया है वे भी उसे भाषा में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, वो तो अनुभव करने की चीज है और उससे उसका ख्याल में आएगा कि आत्मा कैसा है। तो अनुभव करने के लिए क्या करना उसकी बातें चलती है। जब पुलिस वाले परेशान हो गए कि इस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है तो क्या करें, क्यों वो बीमा एजेंट ने जो उस मां का नाप जोख बताया है क्या उस नाप जोख से उसकी मां को पहचाना जा सकता है, क्या पुलिस वाले फीता लेके हर एक मां बहन को मेले में आई हुए को नापेंगे कि इसका सीना कितना है और इसकी कमर कितनी है, और वो उस दिन का नाप काम भी क्या आएगा, क्योंकि जब बीमा कराया था तब सीना 36 इंच था, कमर 32 इंच थी, आज सीना 32 इंच रह गया होगा, कमर 36 इंच हो गई होगी, क्या काम आएगा वो नाप जोख। आखिरकार पुलिस वालों ने कहा कि इस बच्चे को इस मेन गेट पर खड़ा कर दो, सारा जनता यहीं से आकर मेले में जाती है और वापस भी यहीं से जाएगी, तो जितनी माँ और बहनें यहां से निकलें उससे कहा कि बेटा तुम हरेक को देखो और पहचानो कि तुम्हारी माँ कौन है।
क्या मतलब हुआ,
आखिर उस बेटे को अपनी माँ का खोजने का काम स्वयं ही करना पड़ा, पुलिस का कोई सहयोग काम आया नहीं। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा को अपनी आत्मा के खोजने का काम स्वयं ही करना होगा, ये गुरुओं के चक्कर से ज्यादा काम चलने वाला नहीं है, ये पंडित तुम्हें ज्यादा निहाल नहीं करेंगे
क्या।
सही साहब जरा ध्यान देना, यानी कितना पुरुषार्थ हमें अपना करना होगा और कितना गुरुओं का उपयोग है उसकी बात है। अब वो लड़का वहां खड़ा हो गया और एक पुलिस वाला साथ में खड़ा है। वो पुलिस वाला बोलता है, ये है तेरी माँ कि नहीं, ये है तेरी माँ कि नहीं, ये है तेरी माँ कि नहीं, क्या नहीं नहीं बोलता है, जरा ढंग से देख। क्यों, अपनी माँ को ढंग से देखने की जरूरत है? जब पहली निगाह में उस बालक को ये पता नहीं चलता है कि ये मेरी माँ है या नहीं, लेकिन क्या करे, पुलिस वाला डांटता है कि ढंग से देख, तो कहता देख लेता हूँ, ढंग से देख लेता हूँ। फिर कहा ये तेरी माँ है कि नहीं, ये तेरी माँ है कि नहीं, ये तेरी माँ है कि नहीं, क्या नहीं नहीं बोलता, एक झापड़ दूंगा। बोलो, पुलिस वाला कितना धमकाए तो वो बेटा कह देगा कि हाँ ये मेरी माँ है। जब तक उसको माँ नहीं मिलेगी वो बेटा कहने वाला नहीं है। पर आपने हमसे पूछा कि पंडित जी साहब हमें जरा आत्मा समझाओ, मैंने कहा समझाते हैं, बैठो शांति से। 5 मिनट हमने समझाया और कहा समझ में आया कि नहीं, तो फिर 5 मिनट समझाया बाबूलाल जी, आया समझ में कि नहीं, तो फिर 5 मिनट समझाया, आया समझ में कि नहीं। कुछ माथे में है भी, बिल्कुल खाली है, हाँ आ गया समझ में, आ गया समझ। क्यों, क्या हुआ फुलचंद जी, क्या हुआ? इस पंडित बड़ा खतरनाक है, अब की बार ना कहा तो ना मालूम क्या कहेगा, भरी सभा में इज्जत खराब हो जाएगी। यदि मैंने कहा कि अभी भी समझ में नहीं आया तो सारी सभा क्या कहेगी। तो एकदम समझ में नहीं आने पर भी कह देता है कि हाँ आ गया समझ में, कौन? ये इज्जत वाले लोग, क्योंकि इन्हें इज्जत जाने का डर है। लेकिन वो बालक नहीं कहेगा, क्योंकि वो इज्जत वाला नहीं है और उसे सचमुच माँ चाहिए, लेकिन इन्हें आत्मा नहीं चाहिए। इन्हें तो आत्मा की चर्चा शौकिया है, ये तो महावीर भवन में मनोरंजन करने आए हैं, इन्हें आत्मा फातिमा थोड़ी चाहिए। ये देखने आया कि जयपुर से पंडित आया है, देखो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उसका गला कहीं पकड़ा जा सकता है कि नहीं पकड़ा जा सकता है। क्यों, ऐसे लोगों को आत्मा की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। यदि आत्मा समझना है तो इज्जत को खूंटी पर टांग के आना पड़ेगा। घबराना नहीं, मैं किसी की इज्जत खराब करने यहाँ नहीं आया हूँ लेकिन आत्मार्थी के लिए आत्मा ही प्रमुख होना चाहिए। यह समझना बहुत मरम की बात है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आत्मा की बात सुनने को मिले और जूतों में भी बैठना पड़े तो भी बैठ के सुनना, और तेरी पर्याय की प्रशंसा करने वाले मिले और तेरे गले में मालाओं को लाद लाद कर तेरी प्रशंसा करें तो भी मत सुनना, क्योंकि वो प्रशंसा सुनकर तू मान में चढ़ जाएगा तो 4 गति और 84 लाख योनियों में भटक जाएगा। और ये आत्मा तेरी समझ में आ गया तो तू स्वयं भगवान बन जाएगा, फिर तेरे को इतना मान मिलेगा कि 100 इंद्र तेरे चरणों में नमस्कार करेंगे। ख्याल में आएगा नहीं? तो क्या हुआ, वो बच्चा नहीं कह सकता है, कब तक? जब तक उसकी माँ नहीं मिले। कोई कितना ही धमकाए, कितना ही प्रलोभन दे, लेकिन जब तक माँ सामने नहीं आएगी वो हाँ नहीं कहेगा, नहीं कहेगा और नहीं कहेगा। इतनी ताकत चाहिए छाती में आत्मा समझने के लिए कि जब तक समझ में नहीं आए तब तक हाँ ना कहे। तो इज्जत तो चली जाएगी ना, लोग कहेंगे कितना बुद्धू है, इतना समझाया तो भी समझ में नहीं आया। इज्जत रहे तो रहे और जाए तो जाए, कम से कम सच बोलना तो सीख भला आदमी। ख्याल में ना, पहली क्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं। जब उस लड़के ने नहीं कहा, नाना कहा ना बार बार, तो पुलिस वाला बोला कि बेटा तेरी माँ को मैं तो पहचानता नहीं हूं, तू ही पहचानता है,
और तुझे ही देखना है, मैं धूप में क्यों खड़ा रहूं? मैं जाके उस वृक्ष की छाया में बैठ जाता हूं, और जब तेरी माँ मिले तो मुझे बोल देना कि ये मेरी मम्मी है, कि हाँ पधारो पधारो साहब, मैं जरूर बोल दूंगा आपको।
क्या मतलब?
कि एक गुरु लोग, गुरु माने हम अध्यापक, मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरे की मैं समझना भैया, उल्टी बात में समझ लेना है। मैं पंडित शब्द का प्रयोग करूंगा, गुरु का नहीं, नहीं तो खतरा पैदा है जाएगा। क्या? कि ये पंडित लोग आपको यदि ज्यादा समझाएंगे ना, तो आपको आत्मा समझने में डिस्टर्ब और करेंगे। जैसे वो पुलिस वाला सहयोग तो करता नहीं है, और अपनी माँ को खोजने में डिस्टर्ब और करता, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, अरे मैं देख रहा हूँ ना, जब होगी तो मैं बोल दूंगा कि ये मेरी है, और नहीं है तो तू जब तक नहीं समझ ले, बार बार क्यों पूछता है? ठीक है ना? तो वो जाके वहां चुपचाप शांति से बैठे, इसमें ही भलाई है। गुरु जी हमें एक घंटा आत्मा की बात समझा दे, और फिर खुद भी आराम करें और आत्मा का अनुभव करें, और हमें भी कोशिश करने दे आत्मा में जाने की, और 24 घंटा हमारे पीछे पड़े, आई तरी समझ, बैठ नहीं तो मैं समझाता हूँ। तो भाई कोशिश भी तो करने दो। मास्टर जी एक घंटा पढ़ाएं तो बच्चे को यह पाठ याद करने को भी तो कुछ समय देना चाहिए कि नहीं? तो 24 घंटा गुरुओं से चेते रहने से भी आत्मा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु को भी तो अपने आत्मा का अनुभव करना है। अकेला एक ही धंधा थोड़ी है कि 24 घंटा तेरे को समझाते रहेंगे। उन्हें भी अपने आत्मा का ज्ञान ध्यान करना है कि नहीं? उन्हें भी अध्ययन मनन चिंतन करना है कि नहीं? पूरी तरह गुरु पर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है, और गुरु भी शिष्यों के पीछे पड़ जाए ये भी कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाला तो दूर बैठ गया छाया में, और लड़का खड़ा है। सुबह 10 बजे से उसने अपनी माँ को खोजना शुरू किया, सैकड़ों माताओं को देखा, एक घंटा हो गया लेकिन कोई माँ उसे मिली नहीं। अब देखो वो किस तरह अपनी आत्मा को, माँ को खोज रहा है। जिस तरह वह बालक अपनी माँ को खोज रहा है, वैसा ही हमें अपनी आत्मा को खोजना है, क्योंकि ये भी आत्मा, ये भी माँ है ना। देखो वो बराबर किसी माँ बहन पर उसकी निगाह जाती है ना, तो एक सेकंड में ये पता लग जाने पर कि ये मेरी माँ नहीं है, तत्काल मुंह फेर लेता है कि नहीं, कि देखता रहता है कि मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन ये किसी ना किसी की माँ तो होगी, तो जरा मैं पता लगा लूं कि ये किसकी माँ है, ऐसी कोशिश करता है। क्योंकि वो ये पता लगाने जाएगा कि ये किसकी माँ है, तब तक 10-20 महिलाएं निकल जाएंगी, और उसमें उसकी माँ निकल गई मेले में से, तो समझ लेना कि फिर माँ कभी मिलेगी नहीं, और रात में पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ेगा, तो क्या दुर्दशा होगी उसकी कल्पना की जा सकती है। क्यों? इसलिए वो एक सेकंड से ज्यादा देखता नहीं है। ये पता लग जाने पर कि ये मेरी माँ नहीं है, ये किसकी माँ है, इस चक्कर में नहीं पड़ता है। और हम कि इस शरीर आत्मा नहीं है, कि ठीक है शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर है क्या? पुद्गल है, कैसे बनता है, कहां से बना, कितनी हड्डी है, कितना खून है, कितना मांस है, आखिर इसे भी तो समझ लूं कि तेरे को आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तुम तो जहां जाता है वहीं अटक जाता है। तुम अपनी मां को खोजने निकला था ना, ये पता चल गया कि ये मेरी माँ नहीं है, तो उसकी डिटेल में जाने से क्या फायदा है? तुझे पता लग गया कि शरीर आत्मा नहीं है, तो इसकी डिटेल में जाने से क्या फायदा है? ठीक है शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर दो प्रकार के तो होते हैं ना, एक सुंदर और एक कुरूप। और वो कौन सा नामकरण होता है जिसे सुंदर स्वरूप मिलता है? क्यों भाई साहब? और ऊंच गोत्र कौन से कर्म के उदय से मिलता है? कि ये तो शरीर की डिटेल में चला गया, ये आत्मार्थी है ही नहीं। जरा समझने मरम की बात। हमने कहा भैया कि बेलगांव में शिविर लग रहा है, आप पधारना। कहते साहब तो वहां सब व्यवस्था होगी, यहां क्यों नहीं होगी? तो भोजन की? मैंने कहा तू भोजनार्थी है कि आत्मार्थी है? ये क्यों नहीं पूछता है कि वहां आत्मा समझाने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? ये क्यों पूछता है कि भोजन की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? आखिर बेंगलोर वाले भी भोजन तो करते ही होंगे ना, और तुम्हें बुला रहे हैं क्यों? तो उनने कुछ इंतजाम तो किया ही होगा कि नहीं किया होगा? तेरे को क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या समझाया जाएगा, इसका विकल्प नहीं आता है। भोजन का विकल्प आता है तो लगता है तू आत्मार्थी नहीं है, भोजनार्थी है। तेरे को क्या प्रश्न आना चाहिए? एक जयपुर की सही घटना है। मैं बड़े मंदिर में प्रवचन करने जाता था, वहां से लौट के आया। एक आदर्श नगर है जहां मुल्तान के भाई आए लौट के, वो रहते हैं मेरे। वहां मंदिर के सामने दोनों भाई बैठे थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया था और उनने तय किया था कि डॉक्टर साहब जो फैसला करेंगे वो हम मान्य है दोनों को। बोले साहब हम सुबह से यहां आके बैठे हैं और हमारा फैसला कर दो। मैं क्या बोलो, झगड़ा क्या बात का है? बोले झगड़ा इस बात का है कि ये आप भोजन आत्मा करता है कि शरीर करता है, रोटी आत्मा खाता है कि शरीर खाता है। ये भाई कहते हैं शरीर खाता है, मैं कहता हूं आत्मा खाता है। ये फैसला आपको करना है। मैंने कहा आप खाना खा के आए क्या? बोले नहीं अभी खाया नहीं। मैंने कहा चलो ऊपर अपन खाना खाते हैं, देखते हैं कौन खाता है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। नहीं नहीं आप तो मजाक करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं सही बात है, ये शरीर खाता है कि आत्मा खाता है। तो मैंने कहा भैया आत्मा भोजन नहीं खाता है, रोटी नहीं खाता है। तो एकदम उचक्के बोला दूसरा कि आत्मा नहीं खाता है तो इतना अनाज कहां चला जाता है लाखों बोरी। समझता है क्यों? जब की बात है, जब जगजीवन राम खाद्य मंत्री थे, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा इतना गेहूं कहां चला जाता है, ये तुझे पूछना है तो जगजीवन राम के पास जा, और आत्मा क्या करता है ये पूछना है तो पंडित हुकुमचंद से पूछ। तू आत्मार्थी है, तेरी समस्या भोजन की है कि आत्मा की है ये बता। आत्मा क्या करता है क्या नहीं करता है ये जानना है, कि ये भोजन कहां जाता है ये जानना है। तेरा अगला प्रश्न ये होना चाहिए था कि आत्मा यदि भोजन नहीं करता है तो आत्मा क्या करता है, क्योंकि आत्मा के बारे में प्रश्न होना चाहिए ना। तेरा अगला प्रश्न क्या है कि भोजन कहां चला जाता है, इसका मतलब है तेरे दिमाग में समस्या भोजन की है आत्मा की नहीं है। क्यों? रामचंद्र जी अयोध्या से जंगल में जा रहे थे, सरयू नदी के किनारे आए, पुल तो था नहीं, एक केवट नाव से लोगों को पार कर रहा था। जब रामचंद्र जी नाव में बैठने लगे तो केवट ने हाथ पकड़ लिया, बगल में खड़ा कर दिया कि यहां खड़े आप पैर मत रखना मेरी नाव में, कि तेरी जो फीस है ना 1 रुपया 2 रुपया वो ले ले सब, जैसे हमें पार कर दे, नहीं आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। कि क्यों, क्या बात है? कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों की धूल बहुत खतरनाक है, एक शिला पर पड़ी थी तो शिला औरत बन गई, गौतम ऋषि की नारी अहिल्ला बन गई थी ना। यदि ये तुम्हारे चरणों की धूल मेरी नाव पर पड़ी और नाव औरत बन गई तो मेरा क्या होगा? यही नाव मेरी आजीविका का साधन है और मेरे घर में एक औरत पहले से ही है, मुश्किल से मैं उसका पेट भर पाता हूं, और घर में दो दो औरतें हो जाएंगी और नाव आजीविका का साधन खत्म, मैं भूखों मर जाऊंगा। नहीं, बगल में खड़े हो जाओ। तो तू क्या करेगा कि पहले तुम्हारे पैर धोऊंगा जिसमें एक भी रजकण नहीं रहे, जिससे कोई खतरा नहीं रहे मेरी नाव को, और फिर पैर धोए और धो करके उनको नदी में नाव में बैठा के पार किया। और अंत में जब वो पैसा देने लगे तो बोले साहब ये नहीं होगा। क्यों? कि नाई नाई से बाल बनवाई लेता है, धोबी धोबी से कपड़े धुलाई लेता है, अरे अपनी जाति वालों से कोई पैसा नहीं लेता। तो मेरी और तुम्हारी तो एक ही जाति है।
मेरी तेरी कैसी?
अरे तुम लोगों को संसार समुद्र से पार करते हो और मैं नदी से पार करता हूं, इतना ही तो फर्क है। पार उतारने का काम तो दोनों ही करते हैं, तो मैं तुमसे नाव की पार उतरवाई कैसे ले सकता हूं? अरे जब तुम्हारे बाल बनवाने थे मैंने तुम्हारे बना दिए, तुम मेरे बना देना। मैंने तुम्हें नदी से पार कर दिया, तुम मुझे संसार समुद्र से पार कर देना। और जब पंडित जी ये कहानी सुना रहे थे और आगे बोले कि रामचंद्र जी निकल के चित्रकूट में पहुंचे, तो एक श्रोता बोला कि मेरा प्रश्न है कि तू प्रश्न कल 3 बजे करना, 3:30 बजे। कि नहीं नहीं, मैं तो अभी पूछूंगा, 3:30 बजे मुझे फुर्सत नहीं है, दुकान पर बैठना पड़ता है। कि पूछ पूछ कि फिर उस केवट का क्या हुआ? कि बेटा तू केवट की कहानी सुनने आया है कि राम की कहानी?
नहीं,
तो तुमने केवट की कहानी कही ही क्यों? कि राम की महिमा बताने के लिए। केवट की कहानी केवट के लिए नहीं कही, राम की महिमा बताने के लिए कही। वो बालक हरेक महिला को देख रहा है, लेकिन वो हरेक महिला को देखने के लिए हरेक महिला को नहीं देख रहा है। अपनी माँ को देखने के लिए हजारों महिलाओं को देख रहा है। कितना फर्क है दृष्टि में, सोचना आप गहराई से। ये आत्मार्थी पर को भी जानते हैं तो आत्मा को जानने के लिए, और आत्मा को भी जानते हैं तो आत्मा को जानने के लिए। देखो कोई आदमी माँ बहनों की तरफ घूर घूर के देखे तो माँ बहनें ऐतराज करती हैं कि नहीं, एक आदमी की निगाह खराब है, करती कि नहीं करती? और कोई भला आदमी जाकर के देखे तो क्या होगा? बोलो, मैं जाकर के ऐसा देखूं सब महिलाओं की तरफ से तो महिलाएं कहेंगी पंडित जी क्या बात है, मम्मी जी पीछे बैठी है। वो समझते हैं कि ये मम्मी जी को देख रहे होंगे क्योंकि इन्हें कमरे की चाबी चाहिए होगी। समझते, वो समझती है कि ये हमें देखने के लिए हमें नहीं देख रहे हैं। ख्याल में आया है ना? ऐसे ही वो बालक महिलाओं को जरूर देख रहा है, लेकिन महिलाओं को देखने के लिए महिलाओं को नहीं देख रहा है। अपनी माँ की खोज के लिए महिलाओं को देख रहा है। ऐसे ही आत्मार्थी आत्मा को भी अपन जानने के लिए तो आत्मा को जानते ही हैं, लेकिन 7 तत्वों को भी आत्मा को जानने के लिए जानते हैं, 7 को जानने के लिए नहीं। 6 द्रव्यों को भी आत्मा को जानने के लिए जानते हैं, 6 द्रव्यों को जानने के लिए नहीं। और पर द्रव्य पे उनकी निगाह टिकती नहीं। जैसे वो बालक उस माँ को देखता है लेकिन उस पर उसकी निगाह टिकती नहीं। जब पता लगता है कि मेरी माँ नहीं है, एकदम निगाह हटा लेता है। ऐसे ही हमें पता लगे कि ये आत्मा नहीं है तो 1 सेकंड में से उस पर से निगाह हट जाना चाहिए। ऐसी आत्मा की खोज की प्रक्रिया है। सोचो भाई, हमारी माँ बीमार हो, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर कहे कि ये इंजेक्शन लाओ, 1 घंटे के भीतर लग जाना चाहिए, लेकिन अम्मा बचेगी नहीं, देर हो गई तो। लेकिन वो इंजेक्शन जहां मिलता है वो यहां से 30 मिनट का रास्ता है, दौड़ते जाएं तो 30 मिनट जाने में लगेंगे, 30 मिनट आने में लगेंगे। क्यों? अब इंजेक्शन लेने हम दौड़ के जा रहे हैं और रास्ते में लड्डू बट रहे हो तो लाइन में खड़े होके लोगे? बंदर का खेल हो रहा हो मुफ्त में तो देखोगे? बोलो, मुफ्त में फिल्म दिखाई जा रही हो तो देखोगे नहीं? क्यों? कि 1 मिनट की देर हुई तो मां मर जाएगी। ऐसे ही तुम आत्मा की खोज में निकले हो और जहां जो देखने में मिलता है वहीं देखने में रम जाते हो, तुम्हें आत्मा मर जाने वाली है, तुम्हारी मिलने वाली नहीं है। कहां इतनी फुर्सत है, उसे तो बराबर उसकी खोज में लगना है। इसलिए दूसरों को देखता है लेकिन निगाह कहीं जमती नहीं है। ये माँ मेरी नहीं है तो किसकी माँ है? ये जानने की जिसे फुर्सत नहीं है उसे माँ मिलेगी। ये शरीर आत्मा नहीं है तो शरीर क्या है, ये जानने की जिसे फुर्सत है उसे आत्मा नहीं मिलेगा, ये जानने की जिसे फुर्सत नहीं है उसे आत्मा की प्राप्ति होगी।
क्यों जी? ये माँ मेरी तो नहीं है लेकिन है तो सुंदर खूबसूरत, ऐसा विकल्प आएगा उस बालक को? क्यों? ये दो उदाहरण मैंने दिए, ये माँ मेरी नहीं है तो किसकी है, और ये माँ खूबसूरत है, ये दो उदाहरण एक उद्देश्य से दिए हैं। एक कि उस पे रींझ जाए, सुंदरता पे रींझ जाएगा परकी पे तो भी मरेगा। वो बालक किसी माँ की सुंदरता पे रींझने वाला नहीं है, क्योंकि उसे सुंदर माँ नहीं चाहिए, उसे अपनी माँ चाहिए। ख्याल में आए ना? और ये ना पर पे रींझ है ना सुंदरता पे रींझ है। पर में एकत्व बुद्धि का नाम भी मिथ्यात्व तो है, और सुंदरता पर रींझने का नाम राग है। राग माने अनुराग। क्यों? ये अनुरागियों को और मिथ्या दृष्टियों को आत्मा नहीं मिलती है। वो तो ना उसकी सुंदरता पर रींझेगा ना उसमें ये किसकी माँ है डिटेल में जाने की बात करेगा, वो तो ये पता लगते ही कि ये मेरी माँ नहीं है निगाह हटा लेगा। ऐसे ही आत्मार्थी की निगाह ऐसी होती है कि सारी दुनिया को जानता है लेकिन कहीं निगाह जमती नहीं है, उनके डिटेल में जाने की इच्छा होती नहीं है और उनकी सुंदरता पर वो रींझता नहीं है। बोलो, ऐसी हमारी हालत हो तो हमें आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। भाई साहब, एक बज गया लेकिन अभी तक माँ मिली नहीं। पुलिस वाला आया, बेटा अब तो लंच का टाइम हो गया है, अपन ने सुबह से माँ को खोजने का काम शुरू किया था, अब एक घंटा लंच की छुट्टी, चलो खाओ पियो थोड़ा आराम कर लो, फिर आकर के अपन 3 बजे से अम्मा को खोजने का काम फिर शुरू करेंगे। क्यों जाएगा वो बेटा? 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में न मालूम कितनी महिलाएं निकल जाएंगी, और उनमें यदि उसकी माँ निकल गई तो सारी रात पुलिस कस्टडी में बितानी पड़ेगी, मच्छर मक्खियां काटेंगी, वो तो जुदी बात है। और यदि 2-4 दिन माँ नहीं मिली तो क्या दशा होगी? सारी जिंदगी भीख मांगनी पड़ेगी, क्या करेगा? उसे इसकी कल्पना है, इसलिए कहता है भैया पुलिस वाले मुझे कुछ नहीं खाना है तुम जाओ। लेकिन धूप में खड़े खड़े बेहोश हो जाओगे बेटा, कुछ भी हो मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा और हर महिला को, निकलती हुई महिला को देखूंगा अपनी माँ को। ख्याल में है ना? जरा हम अपना विचार करें, हमारा आत्मा की शोध का काम कितना इजी गोइंग चलता है। सुबह 1 घंटा 8 से 9 तक, फिर जाके बढ़िया माल मसाला खा के 10 बजे सो गए तो 3 बजे तक सोकर तो 3:30 बजे फिर ऐसा इजी गोइंग में आत्मा की शोध का काम चलेगा तो अनेक भव लग जाएंगे, हाथ आएगा नहीं कुछ। हमारा तो आत्मा की शोध का प्रोग्राम बनता है, और उस बच्चे का ओनली 1 पॉइंट प्रोग्राम है, 1 सूत्री कार्यक्रम कि मुझे माँ खोजना, माँ खोजना, ना खाना ना पीना ना उठना ना बैठना ना सोना ना जागना। ऐसी माँ की तड़प जिसको जगे उसे माँ मिलती है, ऐसी आत्मा की तड़प 24 घंटा जगे तो उसे आत्मा मिलती है। पुलिस वाले ने कहा चल भैया नहीं तो बेहोश हो जाएगा। कि नहीं, कि खाना तो पड़ेगा तेरे को, खाना पड़ेगा। कि हाँ, तो जो भी हो यही ले आओ, मैं यही खड़े खड़े खा लूंगा और खाते समय भी माँ की खोज जारी रखूंगा। बोलो, तब मेरी समझ में आया कि हमारे मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं, उन्हें शांति से बैठकर खाने की फुर्सत कहाँ है। वे तो आत्मा की धुन में ऐसे मगन हैं कि बैठकर शांति से खाने की उन्हें फुर्सत नहीं है। पहले जमाने में हम छोटे बालक थे ना, 5-10 बरस के, आप भी रहे होंगे, तो कभी हम बैठ के खाना नहीं खाते थे,
माँ से रोटी लेकर मुंह में दवाई और दौड़ दौड़ के खाते थे। आप भी ऐसा करते थे ना? तो माँ हमें डांटती थी कि बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ। हमारी तो आदत खड़े होकर ही खाने की थी, लेकिन माँ ने जबरदस्ती हमें बैठ के खाना सिखाया। माँ से नहीं सीखे तो फिर पत्नी उपदेश देने लग गई, कमाते काय के लिए हो, शांति से बैठ के खा भी नहीं सकते तो रोटियां क्यों था बड़ा जी? तो मुश्किल से हमने बैठ के खाना सीखा। तो महाराज के पास गए तो कहने लगे खड़े खड़े खाओ, क्या करें। अब आजकल हमारे गृहस्थ भी खड़े खड़े खाने लग गए हैं ना, तो क्या बोलते पापा मापा, क्या बोलते हैं? अब 28 मूल गुणों में से एक तो हो ही गया, 27 बाकी है बस। गैल ही गैल में जाते और गैल में मिल गई सेल, अब बाकी रह गया गाड़ी बैल बस। सेल तो सेल समझते ना, वो गाय बैल होता ना, बैल को लगाते हैं जैसे वो जुआ छोड़ के भाग ना जाए, क्या बोलते हैं? साप्ती, साप्ती, रास्ते में जाके साप्ती मिल गई, हो गया हो गया, अकेला गाड़ी बैल बाकी है, पर मैं तो बड़ा किसान हो जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया है? मुनिराज खड़े खड़े भोजन क्यों करते हैं, विचार किया कभी आपने? क्यों? देखो मुनिराज जंगल में रहते हैं इसलिए कि उनको जंगल के जो पशु पक्षी है ना उनसे कोई खतरा नहीं लगता है, लेकिन इन गृहस्थों से खतरा लगता है। क्यों जरा मेरी बात समझना, क्यों? कि वे जंगल के पशु पक्षी खाएंगे तो शरीर को खाएंगे, लेकिन ये गृहस्थ तो दिमाग खाते हैं। इनके बीच में रहो तो माथा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? और उन्हें आत्मा के अनुभव के लिए माथे की जरूरत है, शरीर की नहीं। उपयोग की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, इसलिए जंगल में जाकर एकांत में आत्मा का ध्यान करते हैं। लेकिन आहार एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए तो नगर में आना अनिवार्य है ना, तो नगर में आते हैं तो मोल लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि नगर में कोई आदमी बोलने लायक है जिससे बोले? और खड़े खड़े क्यों खाते हैं? कोई गृहस्थ का घर बैठ के लायक जगह है क्या? यहां तो हंसे सो फंसे, इन्हें खड़े खड़े खाकर फिर जंगल में जाके आत्मा का ध्यान करते हैं। वो बालक खड़ा खड़ा जो भी था वहीं रूखा सूखा खाया, लेकिन उस वक्त भी आत्मा की खोज चालू रखी। मुनिराज भी आहार के बीच में भी आत्मा में चले जाते हैं कई बार, तो हसन शास्त्र में आता कि नहीं आता? बेटा भोजन भी भूल गया है माँ की खोज में। बोलो आप आत्मा की खोज में कभी भोजन भूले हो क्या? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, नाराज मत होना। ऐसा तो कई बार हुआ होगा कि रात के 2 बजे तक आपको नींद नहीं आई होगी, तो पत्नी ने पूछा होगा सोए नहीं कि नहीं, क्योंकि नींद नहीं आ रही कि क्यों? कि जिसके घर में 25 वर्ष की बेटी बैठी हो उसे नींद कैसे आए? हुआ होगा कि नहीं? ऐसा भी हुआ होगा कि सोए नहीं कि नहीं, कि नींद क्यों नहीं आई? कि तुम्हें मालूम नहीं है शेयर मार्केट कितना डाउन जा रहा है, ऐसे में नींद कैसे आए? मार्केट ने हमारी नींद हराम की होगी, घर में बैठी बेटी ने नींद हराम की होगी। कभी ऐसा भी हुआ कि रात के 2 बजे तक आपको नींद नहीं आई हो और पत्नी ने पूछा हो क्यों सोए नहीं कि नहीं, कि क्या बात है? कि मेरी समझ में आत्मा नहीं आ रहा है, नींद कैसे? कभी ऐसा नहीं हुआ तो आत्मा प्राप्त क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जितनी दरकार तेरे को आत्मा की प्राप्ति की होनी चाहिए, जैसी लगन लगनी चाहिए वैसी लगन लगी नहीं। बालक तो भोजन भूल गया, खड़ा है, 2 बज गए, 3 बज गए, अभी तक बालक को मां मिली नहीं है, और 5 बजे तक यदि नहीं मिली तो सारा मेला खाली हो जाएगा। क्यों भाई साहब, आप समझते हैं ना, हम उस बालक की जगह है, और 10 बजे उसने खोजना शुरू किया था और 3 बज गए, और 5 बजे मेला खत्म हो जाएगा 6 बजे, तो कुल कितने घंटे हैं खोजने के लिए? 8 घंटे है ना। अब हमारा मान लो कि एवरेज उम्र 80 वर्ष की होगी, बहुत से बहुत ज्यादा, तो 10 वर्ष का 1 घंटा कहलाया। समझ में आया ना? अब समझ लो आपके कितने बज गए। नहीं आया समझ में? मैंने तुम 10 वर्ष के हो तो 11 बजे, 20 वर्ष के हो तो 12 बजे, समझे? 30 वर्ष के हो तो 1 बज गया, 40 वर्ष के हो तो 2 बज गए, 50 वर्ष के हो तो 3 बज गए, समझे ना? 60 वर्ष के हो तो 4 बज गए, 70 वर्ष के हो तो 5 बज गए, और 80 वर्ष के हो तो 6 बज गए। समझ में आया कि नहीं आया? 3 बज गए और बालक को अभी माँ मिली नहीं है। भाई साहब आपके कितने बज गए? क्यों घबराते हो? बोलो। 4 बज गए। 60 मैंने 4 बज गए, क्यों घबराते हो? लेकिन जैसी उस बालक को लगन है माँ को खोजने की, ऐसी लगन हमारी आत्मा की खोजने की हमें लगी, हमारे अंदर में कोई ऐसा भय है कि यदि 6 बज गए, 80 वर्ष की उम्र में देह छोड़ के चले गए, तो 4 गति और 84 लाख योनियों में न मालूम कहाँ जाकर गिरेंगे, और अनंत काल तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होकर नरक निगोद में सड़ेंगे, इसकी कल्पना है? यदि नहीं है तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सोच लेना अपना अपना किसके कितने बज गए। खबरा जी कितने बज गए? हंसने की बात नहीं है, गंभीरता से उस बात को समझने की बात है। मेरा तो नेचर है ना आपको हंसाते रहना और कहना, लेकिन बात हंसी में टालने की नहीं है, गंभीरता से अंदर समझकर जीवन में अपनाने की बात है। क्योंकि मेरी भी तो परेशानी है ना, आप सुबह से 5 बजे से लाइन पे लगे हो और अब 10 बज गए, क्यों? अब सबको आलस आ रहा है, नींद आ रही है, अब मुझे आपको जगाए भी रखना है और अपनी बात भी समझानी है, समझे ना? इसलिए लेकिन बात गंभीरता से विचार करने की है, क्या उस बालक को अभी तक माँ नहीं मिली है, लेकिन वो माँ की खोज जारी है, जारी है, जारी है। देखो भाई साहब, समय तो बहुत तेजी से भाग रहा है, यदि उस बेटे को माँ नहीं मिली तो उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। हमें आत्मा मिले चाहे ना मिले, तो आप कहो तो उस बेटे को माँ से मिला दूं, अपने हाथ में है, मिला दूं अम्मा जी, ये कह रही मिला दूं, बेटे को तो मिला दूं। ध्यान से सुनना आप जरा, बहुत दूर माँ दिखाई दी, माँ को बेटा दिखाई दिया, तो बेटा दौड़ के जाके पुलिस वाले के पास जाएगा, कहे देखो देखो मेरी माँ है, जाएगा नहीं जाएगा? कहाँ जाएगा? माँ की तरफ। किस किस रफ्तार से जाएगा? घोड़ा गाड़ी की रफ्तार से,
सुपर फास्ट।
अरे सुपर फास्ट, जितनी तेज उसमें ताकत है पैरों में, पूरी ताकत से माँ की तरफ और माँ बेटे की तरफ, और दोनों जाकर मिलके एकम मेक हो गए, माँ बेटा, मैं और बेटा माँ मैं, दोनों की आंखों में से अश्रु की धारा, कोई कोई कुछ बोलता नहीं है, ख्याल में है ना? एक मेक हो गए। पुलिस वाले ने देखा कि लड़का भाग गया, अब वो घबराया कि भले ही माँ मिले चाहे ना मिले, लेकिन लड़का खो गया तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी कस्टडी में था, मेरे जिम्मे था। तो देखता है वो दृश्य को तो देखता ही रह जाता है, अगले ही क्षण संभल के पुलिस वाला है ना, पकड़ के कहता है लड़के यही तेरी माँ है ना? क्या साहब अच्छी तरह देख ली। अबे पूछने की जरूरत थी क्या कि ये तेरी माँ है क्या? क्या उसके व्यवहार से पता नहीं लगता है कि ये इसकी माँ है? लेकिन पुलिस वाला है, उसको ऐसे कैसे पता लगेगा जब तक वो अकड़ के बात नहीं करे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं कि पुलिस वालों से कभी उलझना नहीं है। भले ही ये बात उसकी मूर्खता भरी है, लेकिन बालक बोला कि हाँ भाई साहब पुलिस वाले यही मेरी मम्मी है, और आप कहते हो तो जरा मैं और गौर से देख लेता हूं, क्योंकि उनसे बहस करी और वे अपनी पे उतर आए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये मेरी घड़ी कभी खो जाए, अभी तक तो नहीं खोई, और खो जाए और आपको मिल जाए भाई साहब, तो एक मेरा निवेदन है कि मुझे चाहे देना चाहे मत देना, लेकिन पुलिस में जाके जमा मत कराना। क्यों? तो फिर मुझे गारंटी से नहीं मिलेगी। क्यों? कि पुलिस वाले कहेंगे अदालत में जमा कराओ, फिर अदालत में शिनाख्त की परेड होगी, इसी कंपनी की 25 घड़ियां इकट्ठी करके रखी जाएंगी, और फिर मेरे से कहा जाएगा तुम अपनी घड़ी पहचानो, मेरा बाप नहीं पहचान सकता, फिर नंबर तो मैं देखूंगा नहीं। क्यों? और जब नहीं पहचान पाऊंगा तो मुझे घड़ी कैसे मिलेगी? तो पुलिस वाले यदि नाराज हो गए तो चलो अम्मा को और बेटे को दोनों पुलिस में ले चलो, फिर 20 दिन बाद अदालत में पेश करेंगे, फिर परेड की जाएगी, यहाँ पट्टी चिपका के, यहाँ पट्टी चिपका करके, बेटे से कहा जाएगा तू देख तेरी माँ है कि नहीं, 25 औरतों को खड़ा करके। क्यों? और माँ से बेटे की पहचान कराई जाएगी, और 20 दिन तक जेल में रहते रहते ऐसी हालत हो जाएगी कि ना माँ बेटे को पहचान पाएगी और ना बेटा माँ को पहचान पाएगा। क्यों? इसलिए उनसे भिड़ना नहीं, वे जो कहे सो मान लेना, जहां देख लेता हूं अच्छी तरह। ये दुनिया भी पुलिस वालों से कम नहीं है घबरन, ये भी आपसे पूछेगी कैसे आपको आत्मा का अनुभव, मुझे पूछे क्यों पंडित जी, एक प्रश्न है, बोलो बोलो, आपको तो आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? क्या जवाब दें इनको? कुछ मत कहना, तुमने हाँ कहे तो मरा और ना कहे तो मरे। क्यों? यदि ना कहे तो फिर तुम हमें समझाते कैसे हो, धोखा दे दो। और कहते हमें आत्मा का अनुभव है तो कहेंगे व्हाट इज द प्रूफ, तो प्रमाण पेश करो इनके सामने, और जितने प्रमाण तुम पेश करोगे सब रिजेक्ट कर देंगे जी, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे? ये दुनिया भी पुलिस जैसी ही है, तो जैसे उस पुलिस वाले को उस माँ और बेटे का व्यवहार देखकर जब ये पता नहीं लगा कि ये इसकी माँ है, और पूछने की जरूरत समझी, उससे कहने से भी क्या होगा, तो जिस जगत को हमारा जीवन देखकर, हमारा आचरण देखकर, हमारा अध्ययन मनन चिंतन देखकर ये अंदाजा नहीं लगा कि हमें अनुभव है कि नहीं है, उससे हम कह के भी क्या करेंगे कि नहीं नहीं तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं है, कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहे कि ठीक है, नहीं है कि ठीक है। इनसे कुछ चक्कर में मत पड़ना, ये सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति ये प्रदर्शन की चीज नहीं है, ये तो दर्शन की चीज है। नियम सार में लिखा है कि कोई आदमी को परदेश में करोड़ों रुपए की प्राप्ति हो जाए तो हल्ला गुल्ला नहीं करता, चुपचाप अपने देश में भाग के आता है, और देश में भी लोगों को नहीं कहता कि मुझे करोड़ों रुपया की मिल गई है, चुपचाप घर में रहकर भोगता है। यदि उसने हल्ला गुल्ला किया तो भोग नहीं पाएगा, गवर्नमेंट पुलिस वाले परेशान करेंगे, अरे संस्थाओं वाले चंदा लेने आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, भाई बंद आ जाएंगे, लुटेरे चारों तरफ बहुत है। मूल गाथा है कुंद कुंद की, जो निधि पाकर निज बतन में गुप्त रहे जन भोगते, त्यों ज्ञान निधि पा ज्ञानी जन भी गुप्त रहे कर भोगते। एक ज्ञान तेरे को निधि मिली है ना, तो गुप्त रह के भोगना, इसका प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मारा जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं? क्या हुआ भाई साहब? माँ बेटे को मिल गई, बेटा माँ को मिल गया, ज्ञानी को आत्मा मिल गया, लेकिन एक समस्या अभी भी खड़ी हुई है जो बेलगांव वालों को सुलझानी है। क्यों? कि उसकी माँ ने 500 रुपया इनाम घोषित किए थे ना, कि जो बच्चे को खोज के लाएगा उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। अब वो इनाम किसको देना, अम्मा को के बच्चे को के पुलिस वाले को? बोला क्यों है कोई? आप नहीं है, आपके दिमाग काम नहीं करता, बेलगांव में कोई तब से आप नहीं है, तो आप कहो तो मैं सुलझा दूं ये समस्या, ठीक है आप ही निपटा दो। लेकिन पहली पक्की बात है कि मैं जो निपटाऊंगा वो आपको मानना पड़ेगा, सब सम्मति से पंच बना रहे हो ना, कि निपटा दो मानेंगे, मतलब निपटा दो प्रतिनिधि, निपटा दो। तो ऐसा करो पुलिस वाले को दे, पुलिस वाले को नहीं दे, क्यों, उसने किया ही क्या है, माँ को तो बेटे ने खोजा है और माँ ने बेटे को खोजा है, पुलिस वाले ने किया ही क्या है धमकाने के अलावा, नहीं पुलिस वाले को नहीं देगी। लेकिन तुमसे मैंने कहा था कि मेरे को सौंपो तो मेरी बात माननी पड़ेगी, कि साहब हम मानने को तैयार हैं, लेकिन आप हमको समझाओ तो कि पुलिस वाले का क्या योगदान है। है बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है, कि उस बेटे ने अपनी माँ की खोज का काम पुलिस के संरक्षण में किया है। यदि पुलिस का संरक्षण नहीं मिलता तो बच्चों को उड़ा ले जाने वाले गिरोह भी मेला में सक्रिय थे। कोई भी गिरोह का सदस्य आता कि बेटा तेरी माँ खो गई, कि हाँ चल वहां है, और ले जाता और फिर हाथ पैर तोड़कर सारी जिंदगी भिखारी बनाकर भीख मंगवाता। लेकिन पुलिस की कस्टडी में था ना, और पुलिस वाला बगल में बैठा था वृक्ष के नीचे छाया में, तो उस डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और बेटे ने अपनी माँ खोज ली। तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, भले ही वे कुछ नहीं करे तो उनका खड़ा रहना भी, ये पुलिस चौकी है ना, थाना है ना, इससे ही हम सुरक्षित हैं, भले ही वे हमारा कुछ करे चाहे ना करे, समझ में है ना। तो पुलिस वाले का भी बहुत योगदान है, और उसे मिल क्या रहा बेचारे को, 500 रुपए थी, अरे बेटे को माँ मिल गई, माँ को बेटा मिल गया, और क्या चाहिए, कि नहीं नहीं पुलिस वाले को नहीं देंगे, तो चलो अम्मा को दे दे, कि माँ तू ही ले ले इनाम, के क्या बात करते हो पंडित जी, मैं तो इनाम देने वाली हूँ, मैं ले लू, मुझे नहीं चाहिए, तो बेटा को दे दे। बोले मुझे तो माँ चाहिए था, इनाम नहीं, मेरी माँ मिल गई और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इनाम तो पुलिस वाले को ही दे दो। बेचारे को मिल क्या रहा है 500 रुपए के अलावा, बेटे को माँ मिल गई, माँ को बेटा मिल गया, ख्याल में है ना। ऐसे ही जब तुम्हें आत्मा की उपलब्धि हो जाए तो श्रेय किसको देना, गुरुजी को क्या, खुद को, कि मुझे तो आत्मा चाहिए थे तो मिल गई, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, श्रेय गुरुजी को दे दो, क्योंकि उनके संरक्षण में मैंने आत्मा की खोजने का काम किया है। यदि गुरु का संरक्षण नहीं मिले तो हजारों कुगुरु इसको लूटने के लिए बैठे ही है, कहीं ना कहीं फंस जाएगा और मरेगा बेटा, क्यों, यदि योग्य गुरु के संरक्षण में रहा तो इसके भटकने के चांस नहीं है। गुरु और कुछ नहीं करेंगे, तेरा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन प्रत्येक को अपनी आत्मा की खोज तो स्वयं करनी पड़ेगी। लेकिन गुरु के बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कर्ण लब्धि भी देशना लब्धि के बिना नहीं होती, इसीलिए आत्मानुभूति को भी सम्यक दर्शन कहा और सच्चे देव साथ गुरु की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहा, दोनों का है, निमित्त रूप से गुरु और उपादान रूप से अपनी आत्मा, निमित्त रूप से पुलिस और उपादान रूप से उसके स्वयं के बच्चे का पुरुषार्थ है, इसके बल पर उसे उसकी माँ प्राप्ति हुई है। हमें भी अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी है तो उस बालक जैसी दृष्टि बनानी पड़ेगी, एक निष्ठ होकर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना पड़ेगा और योग गुरु के मार्गदर्शन में करना पड़ेगा, तब आत्मा की उपलब्धि होगी होगी और अवश्य होगी।